Gopi Jana Vallabha Kirivara Dhari. Nandana Braja Janaranjana Yeah.
धरोहर सतन सुमन रे सभी चरणाम भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा कुलानंद की जय। श्री श्री गौर नताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। पिताय गौर देवानंद समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिराधस्य ज्ञानांजन शलाकृ चक्षुर्वन्धितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाहं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुपदं सार्धजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहनलललिता श्रीविशाखान्विताश्च महीकृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशोपकान्तराः कान्तनमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीराधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के इस 24वें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि वृंदावन के वरिष्ठ गोप नंद महाराज आदि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जो कि उस समय केवल 7 वर्ष के थे, वो गोपों के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या फल प्राप्त होगा इससे, क्या ये यज्ञ शास्त्रों पर आधारित है या केवल ये एक लौकिक परंपरा है जो चलती आ रही है, ये सच सच मुझे बताइए। नंद महाराज कहते हैं कि हम लोग सब अनाज और घास के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि हम लोग गोपालक हैं और अनाज घास आदि ये वर्षा पर निर्भर है। वर्षा बादलों से आती है, बादल इंद्रदेव के प्रतिनिधि हैं, वर्षा इंद्रदेव के नियंत्रण में है और इसलिए हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं और ये अनेक वर्षों से अनेक पीढ़ियों से ये प्रथा चलती आई है और केवल हम लोग नहीं, अनेक लोग ऐसे इंद्रदेव की उपासना करते हैं। तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासी भक्तों को इंद्रदेव की पूजा से हटाना चाहा। वो सोच रहे थे कि ये तो मेरे नित्य पार्षद हैं, सब शुद्ध भक्त हैं, ये मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तो अब ये देवताओं के पीछे क्यों लग गए, ये ठीक नहीं है, तो इनको फिर से सही रास्ते पे लाना है। साथ साथ मेरे प्रिय भक्त इंद्र, उसके मन में भी थोड़ा घमंड आ गया है और ये भक्त के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इंद्र के मान का भंग करना है। तो ये भगवान कृष्ण के उद्देश्य थे। इस उद्देश्य से ये न के न प्रकार वो ब्रजवासियों को बतलाना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे कि ये यज्ञ को नहीं करना। अगर वो जो ही बस कह देते कि यज्ञ नहीं करना तो ब्रजवासी मानते नहीं, अनेक कारण देने पड़ते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण कहते कि मैं भगवान हूं, मेरी बात मानो, तो वो भी सही भाव नहीं है वृंदावन का, क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान बनना पसंद नहीं करते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक ग्वालवाल मात्र हैं और इसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कई झूठे तर्क सामने रखे ताकि किसी न किसी प्रकार से नंद महाराज और अन्य जो गोपगण हैं वो इस इंद्रियाद के पद से हटकर दूसरा कुछ कार्य करें। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने कर्मवाद या कर्म मीमांसवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कर्मवाद में यह बताया जाता है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, हमारे सुख दुख क्षेम आदि सब कर्म से आता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलता है, और इसलिए हमारे कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसके पीछे कोई भगवान की भूमिका है ही नहीं, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें फल मिलते हैं, तो इसमें भगवान का क्या लेना देना, कोई भगवान है ही नहीं। और यदि कोई कहे कि भगवान है, फिर भी ऐसा भगवान वो कर्म करने वाले पर आधारित होगा, क्योंकि अगर कर्म करने वाला नहीं होगा तो फिर भगवान किसको कर्म का फल प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान भी कर्म के कानून के अंतर्गत है, उसके अधीन है। श्री कृष्ण इस सिद्धांत को मानते नहीं थे, केवल तर्क के तौर से वो बोल रहे थे। वैसे इसमें कई त्रुटियां हैं इस तर्क में। कर्म के कानून को बनाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, उसे बनाए रखने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, और वो है भगवान। क्योंकि भगवान इस कानून को बनाते हैं, इसलिए वो इस कानून के अधीन नहीं हो सकते। केवल अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण इस कानून पे या इस प्रकृति के अंतर्गत हैं। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तर्माशतम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये जो मूढ़ लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो मुझ भगवान को नहीं जानते। वो सोचते हैं कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं उनकी तरह, मानुष तनुमाष्ट्र तरह, क्योंकि मैं मनुष्य समाज में प्रकट हो चुका हूं, तो लोग सोचते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं ये लोग, इसलिए अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं। मेरा परम भाव क्या है? मेरा परम भाव ये है कि मैं सदैव प्रकृति के परे रहता हूं। इस भौतिक जगत में, इस प्रकृति में जितने भी कानून हैं वो मुझ पे लागू नहीं होते, क्योंकि मैंने ही ये कानून बनाए हैं। और ये कानून बनाकर मैं इसको स्थापित भी करता हूं और देखता हूं कि हर एक बद्ध जीव के ऊपर ये कायदा काम करेगा, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं उदासीन हूं इस भौतिक दृष्टि से। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, यहां पर भगवद गीता में कुछ कहते हैं जो सत्य है, और यहां तर्क के नाते वो कर्म सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत। तस्मात् संपूजयेत् कर्म, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, आपको पूजा करनी ही है तो कर्म की पूजा कीजिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। स्वभावस्थ स्वकर्म कृत, हमें अपने स्थान में स्थित होकर अपने स्वभाव के अनुसार कोई कार्य करना चाहिए, बस यही धर्म है, यही जीवन की परिपूर्णता है, यही सब कुछ है। कर्म को पूजो, अंजसा ये न वर्तेत तब ए वास ही दैवतम। जिसके द्वारा हमारा भरण पोषण होता है, हमारी जीवन, हमारा जीवन चलता है, वही हमारा हमारी अपूजनीय, हमारा पूजनीय देव है। तो कर्म के द्वारा हम जीते हैं, हमारा पेट भरता है, हम भोजन लेते हैं, सोते हैं, खाते, जो भी हम कार्य करते हैं हमारे कर्म के द्वारा होता है। और क्योंकि कर्म से हम जीते हैं इसलिए कर्म हमारी देवता है। तो फिर इंद्र की क्या जरूरत है, इंद्र की पूजा पूजा आप क्यों कर रहे हो? अगर एक वस्तु हमारे भरण पोषण का कारण है और उसको छोड़कर हम किसी दूसरे वस्तु की पूजा करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आगे और इस तरह से बढ़ाए जाते हैं। वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो, जो ब्राह्मण होते हैं, विप्र होते हैं, उनकी जीविका कैसे होती है, जीवन निर्वाह कैसे होता है? वेदों का पाठ करके, वेदों को सिखला के, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये छह कर्तव्य होते हैं एक ब्राह्मण के, एक आदर्श असली प्रमाणिक ब्राह्मण के, जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो ब्राह्मण का काम है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो ब्रह्म को जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उनको जानना चाहिए। तो शास्त्रों को अगर ब्राह्मण पढ़ेगा नहीं तो पढ़ाएगा कैसे, उसका आचरण कैसे करेगा? तो ब्राह्मण के लिए उसका जीवन निर्वाह वेदों के आधार पर होता है, वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, वेदों का आचरण करना। राजन्यो रक्षया भुवः, राजन्य जो क्षत्रिय होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, रक्षया भुवः भूमि या भू भूमाता भू देवी पृथ्वी की रक्षा करके, प्रजा की रक्षा करके क्षत्रिय अपना जीवन निर्वाह करता है। तो यह क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रायते इति क्षत्रियः। और वैश्यस्तु वार्तया जीवेच, जो वैश्य होते हैं वार्तया मतलब व्यापार से, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वैश्य के कार्य होते हैं कृषि गोरक्षा और वाणिज्य मतलब व्यापार। तो वैश्य का धर्म होता है व्यापार करना। शूद्रस्तु द्विज सेवया, और जो शूद्र होते हैं उनका धर्म होता है, उनका कर्तव्य होता है वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों की सेवा करना। तो अपने अपने वर्ण के अनुसार हमें हमारे निहित कार्य करने चाहिए, हमारे कर्तव्य करने चाहिए। तो ये वर्ण किस आधार पे समझा जाता है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, वैश्य कौन ब्राह्मण है? केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से क्या हम ब्राह्मण कहलाते हैं? नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से। अगर किसी ब्राह्मण के घर में एक बच्चा जन्म लेता है परंतु वो ब्राह्मण के लक्षण नहीं दिखाता अपने कार्यों से, उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, समो दमो तपः शौचम शांतिम आर्यवम एव च ज्ञानम आस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। तो इसे इतने सारे गुण हैं जिनका उल्लेख भगवद गीता में श्री कृष्ण करते हैं। अगर ये सारे गुण ब्राह्मण के अंदर नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाता, भले उसका जन्म एक ब्राह्मण कुल में क्यों ना हुआ हो। तो आजकल आधुनिक काल में ये बहुत बड़ी भ्रांति है और लोग सोचते हैं कि केवल हमारा जन्म हो गया, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण हो गए, इसलिए हम मंदिर में जाके पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है, हम गोस्वामी हैं और सारे समाज को हमें सम्मान देना चाहिए, हमको मानना चाहिए, हमें दक्षिणा देना चाहिए। परंतु वो गुण होने चाहिए, तो अपने अपने गुणों के अनुसार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाते हैं, और फिर इस वर्ण के अनुसार जो निहित कार्य शास्त्रों में बताए जाते हैं उनको हमारा कर्तव्य समझ के उस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए। तो श्री कृष्ण कर्म सिद्धांत की प्रशंसा करने के बाद अब ये समझा रहे हैं कि हमारे स्वभाव से उत्पन्न होने वाले निहित कार्य क्या होते हैं। ये ऐसे कोई मनगढ़ंत ढंग से कार्य करने वाली बात नहीं है कि मनमाने ढंग से हमने कुछ भी कर लिया और कहा कि हम ब्राह्मण हैं, नहीं। इसलिए आगे भगवान श्री कृष्ण विशेष करके अब वैश्य को क्या करना चाहिए, वैश्य के कर्तव्य, उनके निहित कार्य क्या होते हैं वो बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी रहते थे, अधिकतर नंद महाराज और अन्य गोप और गोपियां, वो सब वैश्य थे। उनका काम था गोपालन, गऊ की रक्षा करते थे, गाय से दूध लेते थे और दूध से फिर अनेक पदार्थ बनाते थे और इससे उनका जीवन निर्वाह होता था। इसलिए भी श्री कृष्ण वैश्यों के बारे में बताएंगे। कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुशीनम तूर्यम उच्यते, कि जो वैश्य है, वैश्यों के कार्य क्या होते हैं, कृषि वाणिज्य मतलब व्यापार, गोरक्षा और कुशीदम, कुशीदम मतलब पैसा उधार देना और कुछ रखना, और जब पैसा देगा उसके ऊपर ब्याज दे के फिर वो जब पैसा लौटाएगा उसको दे देना उसका डिपॉजिट। तो ये भी वैश्यों का कार्य है। वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो निशम, तो इन चार जो वैश्यों के कार्य होते हैं उनमें से हमारे कार्य गोरक्षा है। तरह तरह के वैश्य हो सकते हैं, जैसे एक वैश्य हो सकते हैं जो केवल कृषि करते हैं, एक वैश्य हो सकते हैं जो केवल वाणिज्य करते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण भगवान कह रहे हैं चार प्रकार के वैश्य होते हैं, उनमें से हम किस प्रकार के वैश्य हैं, हम लोग गोपालन करने वाले वैश्य हैं। वयम मतलब हम लोग, गोवृत्तयो अनिशम, अनिशम मतलब निरंतर, हम लोग केवल गायों की सेवा करते हैं, हम लोग गोपालक हैं। तो गोपालक मतलब हमारे गोपालन का कर्तव्य है। और इस समय आगे भगवान श्री कृष्ण और एक ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे जिसे सांख्य सिद्धांत कहते हैं, सांख्य दर्शन। कल सुबह हम वर्णन कर रहे थे कि जो नास्तिक दर्शन होते हैं और आस्तिक दर्शन होते हैं। आस्तिक दर्शन मतलब वो दर्शन जिनमें वेद को मानते हैं, परंतु ऐसे तथाकथित आस्तिक दर्शन में भी ऐसे दर्शन हैं जो भगवान को नहीं मानते। जैसे हम देख चुके हैं कि कर्म मीमांसा सिद्धांत जो पहले श्री कृष्ण बोल रहे थे, झूठा सिद्धांत बोल रहे थे जानबूझकर, उसमें पुनर्जन्म को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। उसी प्रकार से अब जो सिद्धांत बोलने जा रहे हैं श्री कृष्ण, उसे सांख्य दर्शन कहते हैं। दो प्रकार के सांख्य दर्शन हैं, एक सच्चा सांख्य दर्शन जिसको कि स्वयं भगवान ने कपिल देव के अवतार में अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत में सुनाया है। ये दर्शन भक्ति का दर्शन है, जो कपिल देव ने अपने माता देवहूति को सिखाया उसमें स्पष्ट बताया गया है कि भगवान है। और अंततः इस सृष्टि को जानकर हमें सृष्टि के जड़ तक पहुंचना चाहिए जो कि भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सांख्य योग का मतलब है कि इस सृष्टि में का विश्लेषण करके इसके जड़ को ढूंढ निकालना कि ये सृष्टि आई कहां से। ये तो स्वाभाविक प्रश्न है ना, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न को पूछता है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है। तो विश्लेषण करके जब कोई बुद्धिमान दार्शनिक इस सृष्टि के जड़ तक पहुंच जाता है तो ये है सांख्य योग का उद्देश्य। फिर जड़ को ढूंढ निकालने के बाद क्या करना चाहिए? फिर
भक्ति योग।
संसार के या सृष्टि की जड़ कौन है? भगवान है। तो जब आपको पता चल गया कि सृष्टि की जड़ मूल भगवान श्री कृष्ण है, तो आपको क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। बहुनाम जन्म नाम मंत्र ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों की ज्ञानार्जन करने के बाद कोई विरला ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जान लेता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण सर्वस्व है, वासुदेव या श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के जड़ है। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ प्राप्त होता है। तो फिर भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि अगर हमें भक्ति करनी है तो पहले जानना होगा कि किसकी भक्ति करनी है। इसलिए सांख्य, सांख्य संख्या इस शब्द से आता है, गणना करना या विश्लेषण करना कि इस दुनिया में कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं, कौन से तत्व हैं, हमारे ज्ञानेन्द्रियां हैं, हमारे कर्मेंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, पितर पांच तन मात्रा हैं, फिर हमारे सूक्ष्म शरीर है जैसे मन बुद्धि है, फिर ये मूल प्रकृति है, ये सब तत्व हैं जिससे ये प्रकृति ये सृष्टि बनी हुई है। तो संख्या विश्लेषण करके इसको इस निष्कर्ष पे पहुंचना, तो ये कपिल देव ने सब सिखलाया था। और कैसे फिर जड़ को ढूंढ निकालने से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कितने प्रकार की भक्ति होती है, अलग अलग प्रकार के लोग जिनकी वृत्ति अलग अलग होती है वो अलग अलग तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। एक तामसिक व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण के पास जाए तो वो कैसे सेवा करेगा, राजसिक व्यक्ति जाए वो कैसे सेवा करेगा, एक सात्विक व्यक्ति जाए वो कैसे करेगा, और जो परमहंस होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो कैसे भगवान की सेवा करेगा। ये सब कपिल देव सिखलाते हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में। लेकिन एक और कपिल भी हुए हैं जो नकली कपिल है, लोग उनको भी कपिल के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी सांख्य दर्शन ही सिखलाया है, परंतु एक अलग सांख्य दर्शन, जिस सांख्य दर्शन में भगवान को नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं? वो भी उसी प्रकार से विश्लेषण करते हैं इस सृष्टि का, इस सृष्टि के 24 तत्व हैं, परंतु इन 24 तत्व के पीछे कोई भगवान नहीं है, केवल प्रकृति ही है, प्रकृति ही सब कुछ है। जैसे आजकल वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक इस सृष्टि की परीक्षा करते हैं और बहुत गहराई से वो संशोधन करते हैं कि सृष्टि कहाँ से आई, ये तारे हैं, ये नक्षत्र हैं, कैसे बने, बहुत कुछ करते हैं, परंतु इस सृष्टि के पीछे भी कोई भगवान है इसको नहीं मानते। तो वो भी आजकल के आधुनिक नकली सांख्य योगी हुए। वैज्ञानिक भी एक प्रकार के मुनि होते हैं जो विश्लेषण करना, अपने मनमाने ढंग से कुछ न कुछ तर्क करके कुछ निष्कर्ष पे पहुंचना वो करते हैं, शास्त्रों पे आधारित तो नहीं है उनका तर्क, इसलिए हमेशा वो गलत रास्ते पे ही जाए, सही निष्कर्ष पे कभी नहीं पहुंच सकते। तो वो कहते हैं कि ये प्रकृति ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। अगर हम कहते हैं कि प्रकृति ये दुनिया कहाँ से आई, भगवान से आई, तो फिर वो कहते हैं भगवान कहाँ से आए? तो हम उत्तर देते हैं भगवान कहीं से आए नहीं, भगवान हैं, भगवान स्व आश्रय आश्रय, भगवान अपने ही आश्रय हैं। हर एक वस्तु भगवान के ऊपर निर्भर होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हम अनाज के ऊपर निर्भर होते हैं, अनाज वर्षा के ऊपर, वर्षा बादल के ऊपर, बादल इंद्र के ऊपर, इंद्र सृष्टि के ऊपर, सृष्टि भगवान के ऊपर। तो भगवान हर चीज के मूल आधार हैं, आश्रय हैं, परंतु भगवान अपने ही आश्रय हैं, स्व स्व आश्रय आश्रय, तो भगवान का कोई आदि नहीं है, उनका कोई उद्गम नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी जो कि इस ब्रह्मांड की और हरेक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कहते हैं कि परम ईश्वर श्री कृष्ण है। छोटे 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 मोटे ईश्वर हैं, इंद्र भी एक ईश्वर है, यहाँ इस दुनिया में भी छोटे मोटे ईश्वर हैं, एक छोटा बच्चा भी अपने क्षेत्र में ईश्वर है, परंतु परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, उनका एक रूप है, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रूप है, जो अमर है, जो ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है। अनादि आदि गोविंदम, उनका नाम गोविंद है और वो अनादि है, उनका कोई उद्गम नहीं है और वो स्वयं अन्यों के आदि है, अन्यों के उद्गम है। सर्व कारण कारणम, वो समस्त कारणों के कारण है। तो ये शास्त्रों का सही निष्कर्ष है और सिद्धांत है। तो जब हम ऐसा उत्तर देते हैं ऐसे लोगों को, तो वो कहते हैं नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। अगर आप कहते हो कि भगवान का कोई स्रोत नहीं है, कोई उद्गम नहीं है और भगवान है और सब कुछ भगवान से आता है, तो हम कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब कुछ आता है। जैसे भगवान का कोई उद्गम नहीं, वैसे प्रकृति का कोई उद्गम नहीं। भगवान कहां से आए? भगवान है, तो हम भी कहते हैं प्रकृति कहां से आई? प्रकृति है, प्रकृति भी शाश्वत है। तो ये उनका कथन है और इसलिए वो कहते हैं कि प्रकृति के परस्पर क्रियाओं से, कार्य और प्रतिक्रियाओं से सब कुछ उत्पन्न होता है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके मिश्रण से और इनके परस्पर कार्यों से सब कुछ, ये विविधता जो भी दिखाई पड़ रही है वो उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण यहां बोलते हैं सत्वम रजस तम इति स्थिति उत्पत्ति अंत हेतव। वो कहते हैं स्थिति उत्पत्ति और अंत, मतलब किसी सृष्टि का निर्माण होना, सृष्टि का पालन होना, सृष्टि का विनाश होना, तो ये इसके कारण केवल ये तीन गुण है प्रकृति के, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण। और आगे कृष्ण कहते हैं रजसा उत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत, कि ये रजगुण सृष्टि जो है ये रजगुण से उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार से विविधता हुई है। जब भी कोई सृष्टि का कार्य होता है, कोई रचना का कार्य होता है, तो इसके पीछे रजगुण होता है, तो केवल रजगुण से हो चुका है, बस इसके पीछे कोई भगवान है ऐसे विश्वास करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ा दोष है। कई उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं, तो एक एक करके चार पांच उदाहरण आपको हम देते हैं, तो कृपया इनको ध्यान से सुनिए। और जब आप कोई नास्तिक आदमी से बात करेंगे और वो ऐसे कुछ अनाशना बोलेंगे, तो आप उनको चुप करेंगे, ऐसे बात करेंगे। क्या क्या तर्क और क्या क्या दृष्टांत दिए हैं वैष्णव आचार्यों ने और शास्त्रों में। एक उदाहरण है एक माँ और बच्चे का। आप प्रसूति ग्रह में चाहिए, एक हॉस्पिटल में, डिलीवरी वार्ड में, जहां एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है। आप जाओगे तो क्या देखोगे कि बच्चा माँ के गर्भ से आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा बच्चा माँ से आ रहा है, सही बात है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर वो कहेगा कि बच्चा केवल माँ से आ रहा है, बच्चे का कारण केवल माँ है, तो क्या ये सही है? नहीं, क्यों नहीं? एक पिता भी है, पिता भले उस प्रसूति ग्रह में उस समय बच्चे के जन्म के समय उपस्थित न हो, परंतु दोनों पिता और माता की आवश्यकता है बच्चे के जन्म होने के लिए। तो तो उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं और हरेक योनि में अनंत ऐसे बद्ध जीव हैं। सबका जन्म इस प्रकृति में हो रहा है, तो प्रकृति हमारी माता है। और पिता कौन है? पिता श्री कृष्ण है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां धर्म महद्योनिर् अहम् बीजप्रदः पिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः, जितने भी योनि हैं, ये 84 लाख योनि हैं, अहम् बीजप्रदः पिता, मैं बीज प्रदाता देव हूं, सबका परम पिता मैं हूं। माता प्रकृति है, क्योंकि हमें शरीर प्रकृति से मिला है। ये शरीर 24 तत्वों से बना है, जिसको हम सांख्य योग के द्वारा जानते हैं, परंतु ये शरीर नश्वर है। ये प्रकृति के पीछे भी कोई एक कारण है, प्रकृति जड़ है। प्रकृति को जागृत करने के लिए, प्रकृति के अलग अलग जो अंग हैं उनको लाने के लिए साथ साथ कोई पीछे एक शक्ति चाहिए, वो है परमपिता श्री कृष्ण। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप रसोई घर में रसोई कर रहे हैं, आपको एक सुंदर दावत बनाना है भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाने के लिए। 10-15 तरह तरह के आप व्यंजन बनाना चाहते हैं, तो आपको सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, कितने सारी चीजें चाहिए, 25 प्रकार के आपको सामग्री चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये सारे सामग्री एक जगह लाने के लिए आपको बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा ना, कि बस इच्छा करने से सारी चीजें आ जाएंगी? नहीं, रसोई घर में सब चीजों को रखने के लिए बहुत कुछ योजना बनाना पड़ता है ना। यहाँ बाजार में जाएंगे, ये सब्जी ले आएंगे, नमक ले आएंगे, फिर आप रसोई घर को सजाएंगे। रसोई घर में सब्जी आदि को रख के काम नहीं चलेगा, फिर क्या करना है आपको? सब्जियों को काटना है, फिर आपको बहुत कुछ और करना है, दूध को उबालना है, और ये सब अलग 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 काम एक साथ चलते रहते हैं। तो सब्जी काट के रखने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? उनको मिलाना पड़ेगा, फिर आग के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर हो सकता है उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें मसाला डालना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद भी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जल गया कि नहीं जल गया, कच्चा है कि पक्का है, क्या है। बहुत ध्यान देने के बाद फिर बढ़िया सब्जी बनेगा, खीर बनेगी, बहुत सी चीजें बन जाएंगी। तो जब लोग कहते हैं कि ये प्रकृति ही सर्वस्व है और ये प्रकृति के 24 तत्व हैं, ये 24 तत्व अपने आप मिल गए और ये 84 लाख योनियां बन गई, तो वो ऐसा है कि जैसे एक रसोई घर में सब्जियां तो हैं, हल्दी नमक शक्कर सब है, अपने आप मिलकर बढ़िया दावत बन गए। ऐसे कभी हो सकता है? तो फिर सृष्टि बिना भगवान के कैसे हो सकता है? इतने साधारण उदाहरण है, देखिए थोड़े सोचने की बात है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है इन चीजों। एक और उदाहरण दे देते हैं, कुम्हार का। कुम्हार मिट्टी को लेता है, कुम्हार के पास बहुत सारी मिट्टी पड़ी रहती है, और मिट्टी है, मिट्टी थोड़ा कुछ लेता है और उसके पास उसका यंत्र रहता है। पहले मिट्टी को, मिट्टी में पानी डालता है, कीचड़ कर देता है, फिर कीचड़ को लेता है और फिर वो अपने यंत्र पे डालता है और रेत को घुमाता है। घुमा के फिर अपनी ताकत लगा के, अपनी कला का प्रयोग करके वो उस मिट्टी को एक आकार देता है, और किस प्रकार से वो आकार देता है वो उसी कला है। उसको पता होना चाहिए कितना कहाँ दबाना चाहिए, किस गति से उस यंत्र को घुमाना चाहिए, कितनी मिट्टी डालनी चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, पानी कीचड़ जो है कितना गीला होना चाहिए। एक अनुभवी कुम्हार ये सब चीजों को ख्याल से देखता है और करता है, और फिर बढ़िया एक मटका या जो भी कुछ बन जाता है। फिर ये मटका वो बेचता है, कोई प्रयोग करता है या खुद ही प्रयोग करता है, सोच लीजिए। फिर घर में एक बच्चा है, बच्चा मटका तोड़ देता है तो मटके के टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं। तो कुम्हार क्या करता है, मटके के टुकड़ों को लेकर फिर से मिट्टी में मिला देता है, फिर पानी डालता है और फिर से गीले मिट्टी कीचड़ से और एक मटका बना देता है। तो ऐसे कितने सारे मटके होते हैं या अनेक अनेक पात्र होते हैं जो मिट्टी से वो बनाते हैं और टूट जाते हैं, फिर से कीचड़ में मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से पात्र बनते हैं, फिर वो कीचड़ में वो मिट्टी में चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति वो मिट्टी के समान है और ये जो सृष्टि है, ये 84 लाख योनियां हैं, ये सब ग्रह हैं, लोक हैं, पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक आदि जितने भी रूप यहां दिखाई पड़ते हैं वो सब क्या है, वो मटके के समान है जो कि प्रकृति रूपी मिट्टी से बने हैं। तो बस इससे काम चलेगा, कुम्हार कहां है, सही है ना, कुम्हार भी चाहिए। जब तक कुम्हार नहीं होगा तो ये सब चीजें बनेंगी कैसे। जब ये सृष्टि की रचना होती है ये थोड़े समय के लिए रह जाती है। सृष्टि की रचना कहां से होती है, प्रकृति से। प्रकृति के 24 तत्वों का मिश्रण करके, जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके उनको सजा के अपनी कला का प्रयोग करके मटका बनाता है, भगवान जो कि मूल सृष्टि करता है अपने दृष्टिपात मात्र से, केवल अपनी नजर से अनेक तत्वों को, ये 24 तत्वों को मिलाते हैं अलग अलग तरह से, और अलग अलग तरह से मिला के ये विविध 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं, ये ग्रह, ये नक्षत्र, तारे सब उत्पन्न होते हैं। और जब सृष्टि का विनाश होता है तो फिर से ये प्रकृति में सारे मिल जाते हैं, और फिर जब सृष्टि का सृजन करने का समय आता है तो फिर से वही कार्य वो दिव्य कुम्हार करते हैं। तो ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। सोचिए कि यहां लाइट जल रहा है तो ये बिजली कहां से आ रही है, ये बिजली यहां स्विच हम चालू करते हैं, स्विच चालू कर दिए तो बिजली चालू हो गया, लेकिन क्या स्विच से आता है बिजली, कहां से आ रहा है, कोई ऊर्जा घर से आ रहा है, और वहां ऊर्जा घर से ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रहा है अपने आप, कोई इंजीनियर बैठा है ना वहां, इंजीनियर बैठ के सब देख रहा है कि कैसे ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और कितना ऊर्जा भेजना चाहिए, या ज्यादा नहीं कम नहीं, कम भी भेजेगा ज्यादा भी भेजेगा तो बल्ब उड़ जाएगा, तो सही मात्रा में उसको नियंत्रित करके वो ऊर्जा भेज रहा है, इसलिए यहां सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। नहीं तो इस बल्ब के अंदर कोई शक्ति नहीं अपने आप जले, वो जब तक बिजली नहीं जाएगी वो जल नहीं सकता, जड़ है ये वस्तु। उसी प्रकार से प्रकृति ये जड़ है, अपने आप प्रकृति कार्य नहीं कर सकती, भगवान अपने दृष्टि से वो बिजली भेजते हैं, ऊर्जा भेजते हैं जिससे कि प्रकृति जीवित हो जाती है, और फिर विविध प्रकार के शरीर, विविध प्रकार के लोक आदि इससे उत्पन्न होते हैं। और उदाहरण दो, एक और उदाहरण है, प्रभुपाद जी ने सारे उदाहरण दिए। एक लोहा है आपके पास, लोहा लोहा होता है, उसको स्पर्श करिए ठंडा है। अब उस लोहे को आग के अंदर रखिए, जैसे वो लोहा आग के अंदर रहेगा क्या होता है, वो गर्म होते जाता है, गर्म हो होकर वो होकर आग का रंग हो जाएगा लोहे का, और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, शुद्ध स्पर्श नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी उंगली जल जाएगी। क्यों जल जाएगी आपकी उंगली, क्योंकि उस लोहे के अंदर अब अग्नि के गुण आ गए हैं, लोहा अग्नि के बराबर हो गया है स्पर्श से। लेकिन जब आप लोहे को बाहर आके रखेंगे तो धीरे धीरे से, क्योंकि अभी अग्नि से स्पर्श नहीं है, वो लोहा ठंडा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकृति उस लोहे के बराबर है और भगवान वो अग्नि के बराबर है। जब ये प्रकृति का स्पर्श भगवान से होता है, स्पर्श कैसे होता है, भगवान के दृष्टिपात से, भगवान की नजर से, तो फिर ये लोहा गर्म हो जाता है, अर्थात प्रकृति जीवित हो जाती है। जीवित अर्थात ऐसे प्रतीत होता है कि जीवित हो गई है, प्रकृति कभी भी वास्तव में जीवित नहीं है, लेकिन ऐसे प्रतीत होता है कि प्रकृति जीवित हो गई है। और फिर जब सृष्टि का विनाश करने का समय आ जाता है तो फिर से ये सृष्टि पहले की जैसे हो जाती है, अचेतन। ये शरीर मृत है, अब भी मृत है। हम सब यहां राधा गोकुल आनंद मंदिर में बैठे हैं, फिर भी ये शरीर मृत ही है। ये शरीर में जान नहीं है। जीवित क्या है? जीवित हमारी आत्मा है। जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तब ऐसे लगता है कि ये शरीर जीवित है, क्योंकि ये शरीर काम करता है, बोलता है, खाता है, पीता है, झगड़ा करता है, इसलिए हम सोचते हैं शरीर जीवित है। शरीर जीवित नहीं है। एक गाड़ी के अंदर भी जब ड्राइवर बैठता है तब भी गाड़ी बोलता है, अपने हॉर्न से, अपने आवाज से गाड़ी भी चलता है, गाड़ी भी पीता है, पेट्रोल पीता है, बहुत ज्यादा ही पीता है, तो गाड़ी भी कार्य कर रहा है। सड़क के कुत्ते सोचते हैं ये कोई नया प्राणी आ गया है, उसके पीछे भागते हैं। तो गाड़ी जीवित नहीं है, जीवित दिखाई पड़ रहा है लेकिन है वास्तव में जीवित नहीं। गाड़ी तो मृत वस्तु है, जड़ है, वो चेतना नहीं है गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो ड्राइवर बैठा हुआ है, वो गाड़ी चला रहा है अपनी शक्ति और बुद्धि से, और उसने पेट्रोल आदि सब डाला हुआ है, इसलिए गाड़ी चल रही है। जैसे आत्मा भी अंदर है शरीर के, इसलिए शरीर चेतना के लक्षण को प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो शरीर को चला रही है, उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि के आत्मा है, परम आत्मा है। और ये सृष्टि इसलिए चल रही है कि भगवान इस सृष्टि में है, सारे ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है। गाम आवेश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं कि मैं हर ग्रह हर लोक के भीतर स्थित हूं, और इसलिए हर एक ग्रह अपने चक्र में चल रहा है। और वो कहते हैं इतना ही नहीं, केवल वो सारे ब्रह्मांड के आत्मा नहीं है, केवल वो हर एक ग्रह या लोक के भीतर स्थित नहीं है, वो हर एक प्राणी के हृदय में भी स्थित है परमात्मा के रूप में, साथ साथ हर एक अणु के भीतर भी भगवान स्थित है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, आजकल स्कूल कॉलेज में भी सिखाते हैं कि अणु के अंदर क्या होता है, तो अणु के जितने भी अंग हैं, कण हैं, सब वो वैसे क्यों है, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उस अणु के अंदर है। नहीं तो अणु एटम बम, हर एटम का एटम बम हो जाता है। तो भगवान है इसलिए वो अणु है, वो टिक पाता है, अणु कहलाता है, नहीं तो अणु कुछ और ही हो जाता। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये प्रकृति एक जड़ चीज है। प्रकृति से, प्रकृति के अपने आप के अंदर कोई ताकत नहीं है जीवन को उत्पन्न करने की। एक आखिरी उदाहरण दे देता हूं ज्यादा, ताकि आप 6-7 उदाहरण सुने, आपको भी 2 याद रहेंगे। बिच्छू कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि चावल के ढेर से बाहर आता है, तो कोई अज्ञानी व्यक्ति कहेगा अरे बिच्छू चावल से आया है, तो बिच्छू के जन्म का कारण है चावल। सही है या गलत? बाहरी दृष्टि से सही है, क्योंकि ये बिच्छू आया चावल के गड्ढे, वो पर्वत से बहुत सारा चावल पड़ा था, उसके अंदर से आया वो बिच्छू। लेकिन मूल कारण क्या है? ये तो निमित्त कारण है, चावल का ढेर जो पड़ा है वो भिक्षु का निमित्त कारण है, जैसे माँ बच्चे के निमित्त कारण है, लेकिन मूल कारण कौन है? एक और भिक्षु है जिसने कोई अंडा रखा था वहां, उस अंडे से वो भिक्षु आया है। तो उसी प्रकार से प्रकृति इस सृष्टि के निमित्त कारण है, मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर हम केवल प्रकृति को ही परम मानेंगे, प्रकृति को ही प्रधान मानेंगे, जैसे कि नास्तिक सांख्यवाद दर्शन में लोग मानते हैं, तो ये गलत है। तो ऐसे गलत सांख्य दर्शन को यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तो देखिए, जितने भी दर्शन हम आजकल सुनते हैं, सही दर्शन गलत दर्शन, वो सब पहले बोले जा चुके हैं, सुने जा चुके हैं, इनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। कोई भी दर्शन फिलॉसफी नया नहीं है। कोई भी सोचेगा मैंने के नए दर्शन का आविष्कार किया है, कोई नई चीज नहीं है। हर दर्शन को पहले बड़े बड़े मुनियों ने सोचा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत तर्क भी किया है, आपस में झगड़ा भी किया है कि ये सही है वो सही है। इसलिए हमें ऐसे तर्कवाद में नहीं जाना चाहिए। तर्को अप्रतिष्ठ है श्रुतयो विभिन्ना नसा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न कदहत पंथा। ऐसे श्लोक है कि तर्क है अप्रतिष्ठ है, कि तर्क से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता है। सत्य क्या है इसकी स्थापना केवल तर्क से नहीं हो सकती। श्रुतयो विभिन्ना, शास्त्र भी कितने सारे हैं, कितने सारे शास्त्रों को हम पढ़ते जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। तो केवल अनेक अनेक पुस्तक पढ़ के भी इसका सिद्धांत क्या है, उसकी राय क्या है, इसने क्या कहा है, ये सारे ढेर सारे किताब पढ़ के भी कोई निष्कर्ष नहीं मिलने वाला है। न असाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, क्योंकि सबके भिन्न मत होते हैं। एक दार्शनिक कुछ कहता है, दूसरा दार्शनिक कुछ और ही कहता है, तीसरा दार्शनिक पहले दोनों का खंडन करता है, चौथा दार्शनिक आता है वो तीसरे का खंडन करता है। तो इनका काम ही ऐसे है, एक दूसरे का खंडन करते बैठना। लेकिन सत्य क्या है, कैसे पता चलेगा? धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायम, जो धर्म के तत्व है भगवान के महान भक्तों के हृदय में स्थित होते हैं, और ऐसे महान भक्तों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। ये धर्म का सार है। और ऐसे ही हमें सही तत्व या सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां जैसे नारद जी हैं, असित देवल व्यास और अर्जुन हैं, जो कि श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार चले, ऐसे हमें महान व्यक्तियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। और कभी कभी हमें लगेगा कि अरे इतना सब दिमाग को कष्ट क्यों देना है, ठीक है मानते हैं ना भगवान है, ठीक है हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि ऐसा सब सुनने से मन को थोड़ा कष्ट देके इस सही सिद्धांत को दर्शन को समझने से हमारी श्रद्धा सुदृढ़ हो जाएगी। सामने वाला आके हमको हिला नहीं सकेगा। अगर हम कहेंगे कि हाँ हम जाते भगवान है, लेकिन बाहर गए और कोई ऐसा तेज बुद्धि वाला नास्तिक मिल गया, वो तो हमको घुमा लेगा और ऐसे कुछ बात करेगा कि हमारी बुद्धि डामाडोल हो जाएगी। अरे ठीक है हाँ भगवान है क्या होता है, हाँ सही है, बहुत सही बोल रहा है, किसने भगवान को देखा है, मैंने तो नहीं देखा। तो इसका डर है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि हमें ऐसे सिद्धांत को सुनना चाहिए बड़े ध्यान से, इसके बारे में गौर से सोचना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस, यह होई ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत जो है, जो सही दर्शन है, उसके सुनने के लिए, उसको ध्यान से समझने के लिए आलस नहीं करना, आलसी नहीं बनना, ये सोच के कि कौन दिमाग को कष्ट देगा, इतना सब कौन समझेगा, नहीं। क्योंकि ऐसे सिद्धांत को समझने से सुदृढ़ मानस, हमारा मन सुदृढ़ हो जाएगा, कृष्ण लागे, कृष्ण में हमारा मन हमारी निष्ठा बहुत ही पक्की हो जाएगी। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना है। जब शुद्ध भक्त बनना है तो भक्ति श्रद्धा के ऊपर आधारित होती है और श्रद्धा ज्ञान के ऊपर आधारित होती है और ज्ञान शास्त्रों पे और भक्तों के कथाओं के ऊपर आधारित होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रघु गोस्वामी बताते हैं कि शुरुआत में वैधि भक्ति होती है जो विधियों के अनुसार किया जाता है और ऐसे भक्त को भक्ति करने की प्रेरणा आज्ञाकारी होने से होती है। शास्त्र में कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, उसके मन में एक स्वाभाविक आकर्षण और प्रेम भगवान के प्रति नहीं होता है जैसे कि ब्रजवासियों का था। ब्रजवासियों को ऐसे कोई सिद्धांत सुनने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो ऐसे एक स्तर में थे कि स्वाभाविक प्रेम उनके मन में कृष्ण के प्रति था। जैसे एक माँ है उसका छोटा बच्चा है, क्या माँ को प्रवचन देने की आवश्यकता होती है? माँ को समझाना पड़ता है कि देखो तो माँ हो, बच्चे को प्रेम करना चाहिए, वो तो स्वाभाविक से करेगी ही, माँ का स्वभाव है वो करेगी। लेकिन दूसरा कोई अनजाने आदमी आता है वो उतना प्रेम नहीं करेगा उस बच्चे से। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रजवासी का जो है श्री कृष्ण से स्वाभाविक रूप से प्रेम करते थे, उसे राग भक्ति करते हैं। राग मतलब जो बहुत आसक्ति के ऊपर आधारित होता है, जो बहुत ही तीव्र होता है, जिसके द्वारा भक्त भगवान के अलावा किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता है, कोई दूसरे विचार मन में नहीं आते, कोई दूसरी इच्छाएं नहीं होती है, तो इसे राग भक्ति कहते हैं। लेकिन सबसे शुरुआत में हम वैधि भक्ति करते हैं क्योंकि हमारी भक्ति करने की प्रेरणा उस स्वाभाविक आकर्षण या स्वाभाविक प्रेम पर आधारित नहीं होती है, बल्कि शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा से उत्पन्न होती है कि हाँ भले मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, फिर भी मैं उस स्तर पर नहीं हूं, लेकिन यहां शास्त्र में कहा गया है कि मुझे चार नियमों का पालन करना होगा, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि मेरी भलाई के लिए मुझे करना चाहिए। तो ये शुरुआत है और ये आवश्यक है, लेकिन ये अंत नहीं है। ऐसे इस भक्ति मार्ग में बढ़ते 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 इन विधियों का पालन करने से हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकरः। तो शास्त्र में कहा गया है कि जितने भी विधि विधान हैं शास्त्रों में, उनके केवल दो उद्देश्य हैं कि इन विधियों का पालन करके हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करें, भगवान का हमेशा स्मरण करें, और दूसरी बात कभी भी भगवान को हम भूलें नहीं। तो इस प्रकार से हमें ऐसे जो सिद्धांत बताए जाते हैं, जो हम सुनते हैं, उनको ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करना चाहिए। भले हमें थोड़ी बातें समझ में आए, थोड़ी बातें नहीं आए समझ में, फिर भी हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं, आप तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी की किताबों को रोज पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं लेकिन कई बार चीज समझ में नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए? फिर भी पढ़ते रहना चाहिए। जो बात समझ में नहीं आती है अगर चाहते हैं तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए आपके खाते में और बाकी आगे फिर किसी भक्त को पूछ लीजिए इसका क्या मतलब है, और अगर वो संभव नहीं है तो पढ़ते जाइए कम से कम 20%, 25%, 50, 70, 80% कुछ तो समझेंगे, उससे बहुत लाभ होगा। वो आप दक्षिण भारत के ब्राह्मण की कथा तो जानते हैं ना, जब चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे और ये ब्राह्मण वहां गीता पढ़ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अब क्या कर रहे हो, जब आप समझ नहीं रहे हो अब क्या पढ़ रहे हो, तो फिर भी क्यों पढ़ रहे हो? ब्राह्मण ने कहा क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि मुझे हर दिन एक अध्याय कम से कम गीता का पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गीता पढ़ते पढ़ते हालांकि ये श्लोक और ये संस्कृत आदि मुझे इतना समझ नहीं आता, लेकिन मैं स्मरण कर रहा हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं, कि समस्त लोगों के वो पालक हैं, इतने बड़े हैं, फिर भी वो अपने भक्त के दास बनकर आए हैं। तो देखिए भक्त वत्सल, भक्त वात्सल्य का गुण कितना है भगवान के अंदर। तो महाप्रभु ने कहा तुम सबसे बड़े विद्वान हो। ये बड़े बड़े पंडित हो सकते हैं दूसरे ब्राह्मण, लेकिन इनके पांडित्य का फल जो वास्तव में होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति, वो इनके पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम सबसे बड़े विद्वान हो। तो उसी प्रकार से हमें भी श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल तोते के समान बोलना नहीं चाहिए, हृदय पूर्वक श्रद्धा से भक्ति से हमें बोलना चाहिए, फिर भले हम समझे या न समझे ये असर करेगा। बरसात के मौसम में कभी कभी बादलों की गड़गड़ाहट होती है, बादल गरजते हैं, आवाज आती है, तो बच्चा हो बूढ़ा हो, शक्तिशाली आदमी हो कमजोर आदमी हो, सब भाषा समझ जाते हैं। सबके हृदय में क्या होता है? भय। तो उसी प्रकार से भले हम इस शास्त्र को समझे न समझे, लेकिन अगर रोज हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ के ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये शास्त्रों के वचन हमारे हृदय पे असर करेंगे। तो यहां अभी भगवान कृष्ण ये तर्क, झूठा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं जानबूझकर कि प्रकृति स्वतंत्र है, प्रकृति के परस्पर क्रियाकलापों से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इसके पीछे कुछ नहीं है। परंतु जैसे हम कह रहे थे, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति भी भगवान की प्रकृति है। फिर आगे भगवान कहते हैं, रजसा चोरिता मेघा वर्षन्ति अम्बुनी सर्वतः। रजसा चोरिता मेघा, कि मेघ रजोगुण से प्रेरित होकर वर्षन्ति वर्षाते हैं, अम्बुनी पानी सर्वतः सब जगह। तो रजोगुण से ये बादल प्रेरित होकर वर्षा दे रहा है। प्रजास्तय एव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किं करिष्यति। तो ऐसे जब है सारी प्रजा को जल मिल रहा है और ये सब केवल रजोगुण और बादल के बीच में बात है, तो इंद्रदेव बीच में कहां है? महेंद्र किम करिष्यति, तो इसमें इंद्रदेव को क्या लेना देना है? तो आप कह रहे हैं हे पिताजी, हे ब्रजवासीगण, आप कहते हैं कि इंद्रदेव वर्षा देते हैं, इसलिए हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि वर्षा इसलिए होती है कि रजोगुण से बादल प्रेरित होते हैं, इसलिए वर्षा होती है। तो इंद्रदेव का कोई स्थान नहीं है यहां पर। और फिर भगवान श्री कृष्ण अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अभी ये सब बातें उन्होंने कह दी, कहने के लिए कह दिए, लेकिन अब कहते हैं, न नह पुरो जनपदा न ग्राम न गृहावयम वनोकसस्ताप नित्यम वन शैल निवासिनः। न नह पुरह जनपदा, हमारे घर है पिताजी बड़े बड़े शहरों में नहीं है, बड़े बड़े जनपदों में नहीं है, बड़े बड़े गांवों में नहीं है। हमारा घर कहाँ पे है? वन ओकसस्तात नित्यम, हम तो सदैव वन में रहने वाले लोग हैं, वृंदावन। ब्रज में अनेक वन हैं, उनमें से थोड़े वन 12 वन प्रमुख माने जाते हैं, परंतु वैसे भक्तों ने 132 से अधिक वनों को ढूंढ निकाला है। इन प्रमुख वनों में से है वृंदावन, भांडी वन, ताल वन, बहुला वन, मधुवन आदि सब वन है। और कृष्ण भगवान जहां रहते थे, फिर गांवों को लेकर अलग अलग वनों से विचरण करते हुए गांवों को लेकर जाते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा करते थे और ऐसे आनंद लेते थे। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम लोग तो वन के निवासी हैं, वन शैल निवासी न, शैल मतलब पर्वत, तो हम जंगल और पर्वत में निवास करने वाले व्यक्ति हैं। और फिर आगे कहते हैं तस्मा अतः, अभी वास्तव में भगवान कृष्ण की इच्छा क्या है वो बोलने जा रहे हैं। तो क्या है भगवान की इच्छा? तस्मात् गवाम ब्रह्मणानाम अत्रेश्च आरभ्यताम मखः य इन्द्रयाल संभारा तैर अयम साध्यताम मखः। तो अतः हे पिताजी, गावम मतलब जो गाय है, ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों के लिए, अद्रेह मतलब गिरी पर्वत, कौन सा पर्वत? गोवर्धन। च आरभ्यताम मखः, मखः मतलब यज्ञ। तो इसलिए हे पिताजी, इन तीनों के लिए ये विशाल यज्ञ शुरू किया जाए, आरभ्यताम आरंभ हो जाए। किन के लिए? गवों के लिए और ब्राह्मणों के लिए और गोवर्धन के लिए। तो ये तीन हमारे लिए आराध्य देव हैं, इसलिए इंद्र की पूजा करने के बजाय इन तीन की उपासना हमें करनी चाहिए। यह इंद्र याद संभारा तय अयम साध्यता मखा। तो जो भी सामग्री आपने एकत्र किया है इंद्र की पूजा करने के लिए, उसी सामग्री का प्रयोग आप गाय ब्राह्मण और गोवर्धन इनकी पूजा के लिए करना। तो ये भगवान श्री कृष्ण का निष्कर्ष है। गो ब्राह्मण पिताय च, भगवान श्री कृष्ण गौओं के और ब्राह्मणों के विशेष करके भक्तों के हितैषी होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इन तीनों के ऊपर निर्भर है, इसलिए इस तीनों की आप उपासना करना। इस प्रकार से भगवान अभी बता रहे हैं अपने पिताजी को कि कैसे ये गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए, क्या तरीका बताया, किस प्रकार से गाय ब्राह्मण और गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो अगर आपके अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन की कैसी पूजा करनी चाहिए, ये क्या आदेश दिए, तो आपको कल आना पड़ेगा शाम को 6:30। ठीक है, तो आपके कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपको प्रभुपाद की किताब समझते समय समझ में भी नहीं आया, फिर भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, परंतु अगर ऐसे हम करते हैं तो फिर किताब में रुचि चली जाती है और फिर हम दूसरी किताब, इस किताब को छोड़कर दूसरी किताब में जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है इतना काफी है, और इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रभुपाद की किताब है उनमें से सब इतना मुश्किल है कि आप नहीं समझ पाए, ऐसा नहीं है। काफी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और जब भक्तों के मुखों मुख से सुनेंगे तो आपको उन्हीं बातों को और अच्छा लगेगा सुनने के, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए। हाँ ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है कोई एक किताब, तो कोई साधारण किताब उठा के पढ़िए। तरह तरह की किताब लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, कोई ऐसे छोटे छोटे सरल किताब हैं, कोई ऐसे भी हैं जो पढ़ने के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत है, लेकिन कम से कम छोटे छोटे किताबों को तो पढ़िए, और उसके बाद फिर भागवत को धीरे धीरे से पढ़िए, प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, उनको पढ़िए, ऐसे रुचि बढ़ती रहेगी। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, वैसे वैसे रुचि बढ़ती जाएगी। आपने कहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण के बारे में बताया, तो जो लोग नौकरी करते हैं और जो लोग दुकान चलाते हैं तो उनको ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहिए या नहीं? देखिए, जो वैष्णव होता है, जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है वास्तव में। क्यों? क्योंकि सच्चा ब्राह्मण वो है जो भगवान को जानता है, जो भगवान से प्रेम करता है। केवल अगर कोई व्यक्ति वेदों का पठन पाठन भी कर रहा हो लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो क्या लाभ? जैसे उस दिन हम मथुरा के ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे थे, जो बहुत प्रवीण थे, यज्ञ मंत्र आदि में, मंत्र तंत्र में विशारद थे, फिर भी उनके पत्नियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था, परंतु उनके मन में नहीं हुआ था। तो अपने ही ऊंचे ब्राह्मण जन को धिक्कार रहे थे कि धिक्कार हो हमारे ऊंचे ब्राह्मण जन का। तो जब भक्तों के बीच में, वैष्णव समाज में जब दीक्षा दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम अभी अधिकृत वैष्णव बन गए हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णव समाज में दीक्षा का ये प्रारंभ किया इस प्रकार से, क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, परंतु वैष्णव को होना चाहिए बड़ा नम्र, वैष्णव को सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मुझे दीक्षा मिल तो गई है लेकिन मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं। इसलिए वैष्णव के अंदर, ब्राह्मण के एक आदर्श वैष्णव के अंदर दीक्षा लेने के बाद और भी बहुत नम्रता होनी चाहिए, समझना चाहिए कि मैं अभी कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं बना हूं, केवल सेवक बना हूं, तो मुझे और भी नम्रता से और भी प्रेम से सेवा करनी चाहिए। सिद्धांत से कृष्ण लीला या कथा से बहुत अच्छे लगते हैं, सिद्धांत में रुचि के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है कि सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए बारंबार। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, निवृत्त तर्शय उपगीयमान भवोचर श्रोत्र मनोभिरामा, ये मन को, हृदय को, कर्णों को अच्छा लगेगा, बार बार उसको करते रहने से। और कोई प्रश्न है किसी के?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
कल के प्रवचन में एक प्रश्न है और आज के प्रवचन में दो प्रश्न है। कल एक श्लोक बोले थे अनन्य चिंतन योग्यम हम, और लास्ट में योगक्षेम वहां पर भगवान अपने भक्तों की जो संपत्ति उसका रक्षण करते हैं, और ऐसा भी है कि हरि का नाम लिया तो सब कुछ हरण भी करते हैं, तो ये
रक्षा भी करते हैं हरण भी करते हैं, हरण करके रक्षा करते हैं। वैसे तो देखिए हमारा है क्या, सब कुछ भगवान का ही है ना। भगवान अगर वापस लेना चाहते हैं तो भगवान के भक्त हो या ना हो तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हम कौन सी अदालत में जा सकते हैं? भगवान अगर लेना चाहते हैं कुछ, हमारे कितने भी हाथ हो, 100 हाथ हो, फिर भी हम रोक नहीं पाए। और भगवान कुछ देना चाहते हैं तो हमारे 100 हाथ हो रोकने के लिए तो भी हम रोक नहीं सकते, वो आ जाएगा हमारे ऊपर। तो भगवान अपने भक्तों के लिए वो करते हैं जो उनके भक्ति के लिए अच्छा है, जो उनके शाश्वत लाभ के लिए है वो भगवान करते हैं। जो संसार का अज्ञानी बद्ध जीव है वो बस अभी की सोचता है, अभी तो मेरे लिए क्या अच्छा है, अभी मुझे क्या सुख देगा, इसे प्रेयस कहते हैं। लेकिन भगवान हमारे अंतिम उद्देश्य को देखते हैं, हमारे दीर्घ काल को देखते हैं, श्रेय को देखते हैं, सबसे ऊंचा कल्याण हमारे लिए क्या है, उस हिसाब से भगवान हमसे कुछ लेते हैं या हमें कुछ देते हैं। तो भक्तों को समझना चाहिए कि भगवान कुछ लें या कुछ दें, दोनों भगवान की कृपा है। इस दृष्टि से हमारी हमें भगवान के इन कार्यों को देखना चाहिए।
और दूसरा प्रश्न यह था कि बहुनाम जन्म नाम वाला ऐसा महात्मा दुर्मित है, तो ऐसे महात्मा की बात सुन के जो भक्ति करते वो भी दुर्मित हो सकते हैं,
वो भी
दुर्मित हो सकते हैं क्या?
दुर्लभ,
दुर्लभ,
हाँ बिल्कुल। महात्माओं के पद चिन्हों में चलते तो हम महात्मा बन सकते हैं। महात्मा मतलब कौन? जिसने जो आत्मा सबसे महान व्यक्ति की शरण जिसने लिया है वो महात्मा है। हम अपने आप में महान नहीं है। हम जब महान बनते हैं कब बनते हैं? जब सबसे महान व्यक्ति के हम शरण में जाते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्तियों की शरण में पद चिन्हों में हम चलते रहे तो हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे एक दिन। यही तो सारी पद्धति है भक्ति मार्ग। महाजनों ये न कथा सपंथा, महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
आपने बताया भगवान श्री कृष्ण ने
लीला चल रही है भगवान। वो तो भगवान के भक्त है ही, लेकिन वो सब नित्य पार्षद है भगवान के। यहाँ पर आए हैं और साधारण समग्र मनुष्य समाज में रह के वो भी अपने अपने साधारण मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, और भगवान उनको उपदेश देकर हम सबको उपदेश देना चाह रहे हैं उनके माध्यम से। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब कोई सास बहू को कुछ बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, तो अपने बेटी को डांट कर कहती है। बहू को डांटेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बेटी को डांटने से बेटी माँ के बीच में झगड़ा भी होगा तो चलेगा, कोई समस्या नहीं। तो जब माँ बेटी को डांटती है या कुछ बोलती है तो बहू सुन लेती है, हाँ अच्छा अच्छा ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ब्रजवासियों के द्वारा हम सबको उपदेश देना चाहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे गलत सिद्धांत पर विश्वास नहीं करना, सही सिद्धांत है, केवल मेरे शरण में आ जाओ और उनकी तरह अच्छा भक्त बन जाना। भगवान की सेवा में तो मन लगता है लेकिन भगवान के जप में उतनी रुचि नहीं है। दोनों भी सेवा है तो ऐसा अंतर क्यों? हाँ, क्योंकि भगवान के जप में उस समय हमारे सारे अनर्थ हृदय से ऊपर आते हैं, मंथन होता है, सारा कचरा हृदय से ऊपर आता है, उसी समय सारे दुनिया के विचार आते हैं। क्या यहाँ क्या क्या, उसमें क्या क्या, ये क्या, वो क्या हुआ, क्योंकि एक जगह हम शांत बैठे हैं ना, बाकी से हम शांत बैठते ही नहीं है। कुछ ना कुछ बातचीत हो रही होती है, कुछ करते हैं कुछ करते हैं, लेकिन जब के समय और कुछ काम नहीं, केवल हम हैं बैठे हैं शांत, तो फिर शांत आदत नहीं है शांत बैठने की, और मन को भी आदत नहीं है, तो मन तरह तरह की बातें फिर कहने लगता है जब के समय ही। तो प्रत्याहार मतलब ऐसे विचारों को दूर हटाना चाहिए और केवल भगवान के नाम के ऊपर मन को केंद्रित करना चाहिए। ये अभ्यास से होगा, मन का नियंत्रण ऐसे अभ्यास से हो पाएगा और वैराग्य से। अभ्यास से है तो कौन तेय वैराग्य न चीयते, असंशयम महापाहो मनोबुद्धुम निग्रहम चरम। जब अर्जुन कहते हैं कि ऐसे मन को वश करके किसी आपके ऊपर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, तो भगवान कहते हैं अवश्य असंशय महापाहो, निश्चित ही तुम जो कह रहे हो वो सही है कि मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। तो अच्छा जप करने के लिए हमें जो आवश्यक है वो करना चाहिए। हम कैसे बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक हाथ में माला लिए बैठे हैं, दूसरे हाथ में अखबार है, या सामने टीवी चल रहा है एक हाथ में माला है, या गाड़ी चला रहे हैं और दूसरे हाथ में माला है, या बस किस तरह से हम कहाँ कौन से वातावरण में जप कर रहे हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। और सुबह को जल्दी उठ के जप करना चाहिए, तो रात को जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह को जल्दी उठ पाएंगे, जल्दी उठेंगे तो सुबह अच्छा जप होगा, क्योंकि सुबह का समय प्रातः काल का समय सत्व गुण का समय होता है। तो अगर हमें मन से जप करना है तो सुबह सुबह का समय जो है बहुत अच्छा होता है। प्रश्न ये है कि कृपया ये बताइए कि ये जो दर्शन भगवान ने कहे कर्मवाद और सांख्य इत्यादि, ये गलती इसमें क्या है साफ बताइए, क्योंकि ब्रजवासी गण इस दर्शन को सुनकर मान गए, उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। ब्रजवासियों ने इसीलिए नहीं कृष्ण की बात मानी कि उनको लगा कि कृष्ण का तर्क बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। उन्होंने कृष्ण की बात मानी क्योंकि कृष्ण से वो इतना प्रेम करते थे, जो भी कृष्ण बोलते थे वो करते थे। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था उनका कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे कृष्ण के लिए, इसलिए उन्होंने ये किया। मूल कारण तो ये है, ये तो केवल निमित्त है कि वो कोई दर्शन झूठा दर्शन बोल रहे हैं इत्यादि। और क्यों ये दर्शन गलत है वो तो हम समझा रहे थे पहले कि दोनों ही दर्शनों में वो भगवान को कोई स्थान नहीं देते, न कर्मवाद में और न इस नास्तिक सांख्य में। ठीक है, शरीर मृत है, प्रकृति भी जीवित नहीं है। प्रकृति में हर वस्तु मृत है लेकिन मन तो मृत नहीं है, मन भी मृत है, मन भी भौतिक ही है। लेकिन मन ऐसे कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि शरीर में आत्मा है। जब आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, जब आत्मा भगवान के धाम में चले जाएगा, उस समय ये भौतिक मन नहीं रह जाएगा, इस मानसिक तत्व में मिल जाएगा। ये मन भी भौतिक तत्व ही है। भूमि आपनवायु मन कम मनोबुद्धि वचर अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये अष्टधा प्रकृति में मन भी एक धातु है प्रकृति का। तो ठीक है, आज यहाँ कथा समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको प्रसाद लेना है तो जल्दी रात को सोना है, जल्दी सुबह उठ के झोंक नहीं जप करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।